हबीब तनवीर की इस नाटक में भी रंगमंडल के प्रशिक्षित अभिनेताओं और छत्तीसगढ़ी कलाकारों का समन्वय था, लेकिन इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों के योग से इस नाटक की प्रस्तुति में विशेष प्रकार का बल आ गया। मजदूर पुरुष और महिलाएं, पुलिस वाले और कोरस में सभी छत्तीसगढ़ी कलाकार थे। केवल मात्र एक अपवाद थी नूतन सूर्य, लेकिन अपने अभिनय के लचीलेपन और ऊंचे खुले स्वर की गायकी के साथ वे माला, पूनम, भुलवाराम, बिजलाल, दीपक तिवारी आदि की अभिनय शैली के साथ पूरी तरह घुल मिल गई। दूसरी ओर संभ्रांत वर्ग के चरित्रों की भूमिकाओं में श्री वल्लभ व्यास, हिमानी शिवपुरी, विजय शुक्ल, हेमा सिंह, कविता वैद, अनुपम श्याम, सीमा विश्वास, रानी खानविलकर, नीलिमा शर्मा, लोकेंद्र त्रिवेदी, बापी बोस, रमेश मनचंदा, अशोक लोखंडे आदि निपुण कलाकार थे, जिन्होंने अपने चरित्रों के मन स्थितियों और अंतर्विरोधों का गहराई से समझा। इन कलाकारों में संभवतः अधिकांश तो आज रंगमंच, टीवी और फिल्मों के सुपरिचित नाम हो चुके हैं। हबीब तनवीर ने दुश्मन के निर्देशक से यह सिद्ध कर दिया कि अपने पारंपरिक रंगमंचीय अनुभव में ही नहीं बल्कि यथार्थवादी अभिनय शैली के निर्देशन में भी उनकी जबरदस्त गिरफ्त है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के लिए हबीब तनवीर ने दुश्मन का निर्देशन सन 1989 में किया था। इसे एक वर्ष पूर्व ही वे हिंदी के यथार्थवादी मौलिक नाटक शंकर श्रेष्ठ कृत एक और द्रोणाचार्य कर चुके थे। यह नाटक महाभारत किसी प्रसंग पर आधारित नहीं है बल्कि आधुनिक भारतीय शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार और शिक्षक वर्ग की कुत्सित मनोवृत्ति का पर्दाफाश करता है। शिक्षकों और छात्रों के बीच के कटु संबंध और उनके कारण छात्र वर्ग में बढ़ते हुए असंतोष को व्यक्त करने वाला यह नाटक अत्यंत प्रासंगिक है। निसंदेह द्रोणाचार्य, अर्जुन और एकलव्य की कथा को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाला यह नाटक अपने कथावस्तु के कारण ही हबीब तनवीर के लिए आकर्षण का केंद्र बना। किंतु यह नाटक शब्द बहुल है, अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को भी नाटकीय या दृश्यात्मक न बनाकर शंकर शेष ने लंबे लंबे संवादों के जरिए उनका वर्णन किया है। हबीब तनवीर ने इस नाटक में भारी कांट छांट की, कथा को नया मोड़ देने के लिए नहीं बल्कि उसके मर्म को दर्शकों तक असरदार तरीके से पेश करने के लिए। इस संबंध में एक नाट्य संगोष्ठी में हबीब तनवीर ने कहा, शंकर शेष मर गए थे जब मैंने उनका एक और द्रोणाचार्य किया, मगर मैंने उनकी इतनी लिबर्टी उसमें ली थी कि संवाद प्रधान नाटक हो एक्शन प्रधान नाटक बना दिया। वह संवाद काट दिया और दिखा दी वह आत्महत्या यानी उसके एक्सीडेंट छत से, वह भी दिखा दिया, ओपन एयर से में किया था और सारी चीज़ें। हो सकता है कि हो तो बहुत खुश होते, मगर यह भी हो सकता है कि होते तो बहुत नाराज भी होते। यह सच है कि हबीब तनवीर ने समकालीन नाटककारों के मौलिक नाटक बहुत कम किए, लेकिन अधिकांश नाटककार या कथाकार उनके रंगमंचीय प्रयोजन को पूरी तरह समझने में शायद सफल नहीं रहे। कम से कम प्रदर्शनों के शुरुआती दौर में तो वह बात साफ तौर पर जाहिर होती है। शब्दरहास में संभवतः इसके एकमात्र अपवाद थे। इन नाटककारों और निर्देशक हबीब तनवीर के संबंध में विशेष कुछ कहने की जरूरत इसलिए भी नहीं कि उनका मन और प्रयोजन जान लेने के बाद बहुत सारे सवालों का जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है असगर जब वजाहत के बहुचर्चित नाटक जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्माई नहीं का। यह नाटक सबसे पहले हबीब तनवीर ने श्री राम सेंटर रंगमंडल के लिए किया था। प्रदर्शन के पहले दौर में इसने जबरदस्त हलचल पैदा की और बाद में यह पाकिस्तान के दर्शकों को भी अभिभूत कर गया। इस नाटक के प्रदर्शन के अवसर पर प्रकाशित एक स्मारिका में हबीब तनवीर ने इसके कथानक के बारे में कहा, असगर वजाहत का यह नाटक सच्ची घटना पर आधारित है। 1947 के विभाजन के बाद लाहौर में रतन लाल जौहरी की मां ने अपनी कोठी छोड़ने से इनकार कर दिया जो लखनऊ के सिकंदर मिर्जा और उनके परिवार को सरकारी तौर से अलाट हुई थी। उसे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि मुसलमान परिवार के लोग उसकी कोठी में उसके साथ रहें, लेकिन जब उसे हिंदुस्तान जाने की राय दी जाती तो वह लाहौर और अपनी कोठी छोड़ने पर हरगिज राजी न होती थी। रफ्तार रफ्ता वो नेक दिल और सारे शहर में इतनी हरदिल अजीज हो गई कि जगमाई कहलाने लगी। फिर जब एक दिन वो मर गई तो सवाल उठा कि वो दफन किया जाए या जलाया जाए। मोहल्ले के मौलवी ने फतवा किया कि उसके धर्मानुसार उसे आग के सुपुर्द कर दिया जाए। ये बात मोहल्ले के चंद गुंडों को गवारा नहीं हुई, उन्होंने मौलवी का कत्ल कर दिया। यह घटना दरअसल लाहौर में घट चुकी थी और एक रपट की सूरत में दिल्ली के रोजनामे प्रताप में छप चुकी थी। इस सच्ची घटना की पुष्टि करते हुए इसके नाटककार असगर वजाहत ने इनके एकाधिक चरित्रों की जीवंतता के बारे में कहा, इस नाटक में कुछ चरित्र वास्तविक जीवन से लिए गए, विशेष रूप से पाकिस्तान के जाने माने शायर स्वर्गीय नासिर काजमी जो इस नाटक में खुद एक चरित्र के रूप में पेश होते हैं, उनके संवाद में उनके ही शब्द हैं जो उन लेखों में उद्धृत किए गए थे जिन्हें उन पर श्रद्धांजलि के रूप में प्रकाशित किया गया है। रतन की मां नाटक के केंद्र में, किंतु वह अकेली नहीं, उसके पेशेदार मौलवी साहब हैं नासिर गाजमी, मिर्जा साहब और अन्य कई लोग हैं। भले ही सतही तौर पर उनके मजहब अलग अलग हो, लेकिन वास्तव में वो एक ही हैं। इस नाटक के लेखन से लेकर प्रस्तुति तक की अंतरकथा भी कम दिलचस्प नहीं। हिंदी रंग जगत को एक विशिष्ट नाटक के समृद्ध करने की प्रक्रिया के संबंध में भी यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात 80 के दशक की उत्तरार्ध की है। उन दिनों दूरदर्शन के लिए नए टेलीप्लेस आमंत्रित करने की मुहिम शुरू की थी। आज की तरह अनेक टीवी चैनल शुरू नहीं हुए थे। हम लोग की आशाश्रित सफलता से प्रेरित होकर दूरदर्शन इस तरफ मुखातिब हुआ था। असगर वजाहत के जेहन में यह कथानक वर्षों से जड़े जमाए बैठा था। उन्होंने टेलीप्ले के लिए इसका आलेख तैयार किया और दूरदर्शन को भिजवा दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका कथानक हमारे समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक धार्मिक सहिष्णुता पर केंद्रित था। भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ही नहीं, इससे भी अधिक भारत पाकिस्तान के कटुतर होते संबंधों को भी यह नाटक काफी हद तक सहज और मधुर बनाने में कामयाब हो सकता था। लेकिन दूरदर्शन के सवाय सरकारी रवैये के कारण यह मुमकिन नहीं हो सका। इसका कथानक अत्यंत संवेदनशील था और सरकारी प्रतिष्ठानों और अधिकारी सामान्यतः संवेदनशील नहीं होते। संभव है कि उनकी कुछ व्यवस्थाएं भी हों, पर आमतौर असगर वजाहत का यह नाटक दूरदर्शन ने अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकृत आलेख असगर वजाहत के झंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। फोर्ट फाउंडेशन के नए नाटककारों को प्रोत्साहित करने की गरज से एक योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत हिंदी लेखकों से नए नाटक लेखकों को आमंत्रित किया जाना था और संभावना युक्त होने पर उनको मंचित किए जाने का प्रावधान भी रखा गया था। फोर्ट फाउंडेशन द्वारा संचालित नाटक लेख कार्यशाला के संचालक श्री नेवीचंद जैन थे। हिंदी के वरिष्ठ निर्देशक, रंगकर्मी और समीक्षक इसके निर्णायक मंडल के सदस्य थे, जिनमें हबी तनवीर भी सम्मिलित थे। असगर वजाहत ने इसके आलेख को संशोधित करके रंगमंचीय नाटक का कलेवर दिया। इस आलेख के प्रथम वाचन ने ही निर्णायक मंडल के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। रवि तनवीर ने इसके निर्देशन को स्वीकृति दे दी। चूंकि यह नाटक विशुद्ध यथार्थवादी शैली में लिखा गया था, इसलिए इस अभिनय शैली में नाटक प्रस्तुत करने की क्षमता रखने वाली संस्था के रूप में श्रीराम सेंटर की रंगमंडली इस प्रयोग में जुड़ गई। हबी तनवीर जब जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्माई नहीं का पूर्वाभ्यास शुरू किया तो अपनी रंग अवधारणाओं के मुताबिक नासिर गाजमी के अलावा अल्लामा इकबाल, फिराक गोरखपुरी, शायर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, राही मासूम रजा के गीत और नज़मों का भी खूब बखूबी इस्तेमाल किया। जरूरत के मुताबिक इसके एकाधिक गीत हबीब तनवीर ने ही भी लिखे। गोरखी के दुश्मन की तरह हबीब तनवीर ने उसके यथार्थवादी ढांचे को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि कथा के महत्वपूर्ण प्रसंगों को अधिक गहरा और सहज संप्रेष्य बनाने के लिए गीतों और नज़मों का इस्तेमाल किया। असगर वजाहत के आलेख में हबीब तनवीर ने कुछ संशोधन में किया। इस संबंध में उनके शब्द, मैंने सांप्रदायिकता के विषय में कुछ और परतों का इजाफा करने की गरज से अंत में दो अर्थियां दिखाई हैं जिन पर पूरा एक फसाद खड़ा हो जाता है। वही मारकाट देखने में आती है जो हम आज तक देखते चले आए, जिसका सबसे भयानक रूप गुजरात में अभी तक बर्बादियां करता नजर आ रहा है। मैंने विषय में और गहराई पता करने के उद्देश्य से पात्रों संवादों में इधर उधर कुछ फेरबदल किया। इसके अलावा उर्दू के कुछ समकालीन शायरों को मुनासिब चीजें भी हीरे जवाहरात की तरह नाटक में जड़ दी है, जिन्हें पाकिस्तान के नामी शायर नासिर गाजमी की गजलें भी शामिल है और पंजाब के वरिष्ठ कवियत्री अमृता प्रीतम की एक हीर के अंदाज में कही हुई दिल झंझोड़ देने वाले नज्म भी शामिल है। असगर वजाहत इन दिनों गजलों नज्मों के शामिल किए जाने और खासतौर पर अपने आलेख के अंत को बदल जाने से बेहद असंतुष्ट थे। भले ही सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हबीब तनवीर द्वारा ली गई इस छूट से अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते रहे। मैंने उन दिनों संगीत नाटक अकेडमी में था। पाली प्रस्तुति के 2-3 दिन बाद मेरे कार्यालय में मैंने उन नाटक के सफल प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई दी। वे अनमनी सुने जा रहे हैं। उनका कहना था कि हबीब तनवीर ने नाटक के बीच अनेक स्थलों पर गीत, गजलों और नज्मों के इस्तेमाल कर प्रस्तुति को रंजक तो बना दिया, लेकिन इससे कथा की तुर्शी पर गहरा असर पड़ा है। नाटक को मौलवी की हत्या करिए जाने के मार्मिक प्रसंग पर ही समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि नाटक की संपूर्ण त्रासदी अंत के कोरस से विनष्ट हो गई है और इसका यह प्रभाव नहीं पड़ा जो अभीष्ट था। मैं नाटक देख चुका था, इसलिए उनका मतलब समझने मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरी ओर उन गीतों, गजलों और नज्मों के इस्तेमाल के जरिए मैं उस प्रभाव को भी लक्षित कर सका जो हबीब तनवीर के नजरिए से नाटक की विभिन्न घटनाओं को मार्मिक प्रसंगों को रेखांकित करने के लिए जरूरी था। मैंने असगर वजाहत से कहा कि हबीब तनवीर इस नाटक को पूरी तरह यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करने के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने सटीक तरीके से उन गीतों और गजलों के जरिए दर्शकों से एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। यह कोशिश दर्शकों को लिजलिजी भावुकता से बचाती है और उन्हें परिविचार के लिए उत्तेजित भी करती है। कोरस के रूप में ये कविताएं दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए नहीं लिखी गई, न ही उनके शब्द रंजन के लिए अवकाश प्रदान करते हैं, लेकिन वे उन घटनाओं के प्रति काव्यात्मक किंतु सीधी टिप्पणी करते हैं तो इसके असर को ज्यादा तुर्श करता है, भावनाओं के स्तर पर ही नहीं विचारों के स्तर पर। मेरी इन बातों के बाद असगर वजाहत के असंतोष पर शायद थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन उस समय वे इस बात को पूरी तरह पचा नहीं पाए थे। दर्शकों की व्यापक प्रतिक्रिया के बाद वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि हबीब तनवीर ने इस नाटक में पूरी तरह यथार्थवादी कलेवर में प्रस्तुत क्यों नहीं किया। श्रीराम सेंटर की इस प्रस्तुति ने सारे अभिनेता, उनके रंगमंडल के सदस्य ही थे, उनके अभिनय में उतनी सहजता और खुलापन नहीं था जिसकी अभी तनवीर को अपेक्षा थी। वाली नाटक की प्रसिद्धि कमजोरियां डेली नहीं थी। रंगमंडल का यह नाटक श्री रामचंद्र के दूसरे नाटकों के मुकाबले कहीं ज़्यादा असरदार और कामयाब था। फिर भी अभी तनवीर इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। खास बात उन गीतों गजलों की अदायगी की थी। उनके संगीत और उसकी अदायगी की एक किस्म की औपचारिकता थी। हबीब तनवीर इसके एकदम खिलाफ थे। इसलिए रंगमंडल की प्रस्तुति के बाद हबीब तनवीर ने इस नाटक को अपने नया थिएटर के कलाकारों के साथ फिर उठाया। इस प्रस्तुति में श्यामा, रंजना तिवारी और नगीन तनवीर के खुले और असाधारण अंदाज ने शायरों के शब्दों को अंतर्निहित अर्थों को तो उजागर किया। इस आदि घटनाओं पर की जाने वाली टिप्पणी से भी दर्शकों से सीधा संवाद स्थापित किया। यथार्थवादी नाटक के वास्तविकता के भ्रम को तोड़कर बार बार दर्शकों के मन मस्तिष्क को उद्वेलित करने में यह प्रस्तुति पूरी तरह सफल रही। इस प्रस्तुति की एक बड़ी विशेषता यह थी कि गोविंद राम, रामचंद्र, उदयराम, रामचरण, बलेंद्र सिंह, रंजना जैसे कलाकारों ने यथार्थवादी अभिनय शैली के उन सूक्ष्म तत्वों को संरक्षित करने में आशाशीय सफलता प्राप्त की। हबीब तनवीर के अन्य नाटकों की तरह इस नाटक की भी लगभग हर प्रस्तुति में अभिनेताओं को भूमिका बदल जाना सहज और स्वाभाविक रहा है। फिर भी यह सच है कि इसके प्रभाव में कमी नजर नहीं आती। मैंने पिछले वर्ष इस नाटक की प्रस्तुति में नगीन तनवीर, श्यामा, गोविंद राम के साथ ही हबीब तनवीर को भी कोरस के रूप में देखा। हबीब तनवीर कोरस द्वारा गाए जाने वाले प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ को गहरा करने के लिए जिस तरह अपनी आंखों, चेहरों, हाथों और भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल करते हैं वह सचमुच अद्भुत है। एक एक शब्द का अर्थ उनकी देह भाषा के साथ बेहद असरदार हो जाता है। 80 के पार हबीब तनवीर अभिनेता के रूप में आज भी उतने असरदार हैं जितने 50 वर्ष पहले थे। यथार्थवादी नाटकों की अस्मिता खंडित किए बगैर उन्हें अपने मुहावरे में डालने की प्रक्रिया हबीब तनवीर के अन्य नाटकों के असर से कुछ भिन्न होते हुए भी उन्हीं के घराने की चीज बन जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न घरानों की तरह समकालीन भारतीय रंगमंच में हबीब तनवीर का घराना भी अपना खास मुकाम बनाने में पूरी तरह सफल हुआ है। दुश्मन एक और द्रोणाचार और सबसे अधिक जिस लाहौर नई दीख्या व जन्माई नई प्रस्तुतियाँ इस तत्व को साक्ष्य प्रदान करती हैं। लाहौर के इस दास्तान का यह रास्ता हबीब तनवीर के मुहारों के एक नए मुकाम तक पहुँचाने में बेहद कामयाब रहा है।